नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हुरमोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
श्री मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, हुरमोज, असालुवेह, ज़िरोफ्त, केशम द्वीप और कोनाराक सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। एक रिपोर्ट।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान पर इससे भी बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन के कैंप टिटिन में अमरीकी सेना की बैरकों पर हमलों की जिम्मेदारी ली। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर तैनात अमरीकी सैन्य बलों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिका ने ईरान के मुद्दों पर चीन और रूस के साथ गुप्त रूप से चर्चा की। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चीन ने हुरमुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि चीन इस बात से सहमत है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। चीन इस बात से भी सहमत है कि हुरमुज़ जलडमरू मध्य में निर्बाध समुद्री व्यापार होना चाहिए। नेपाल में 19 सदस्य भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों का विश्लेषण शुरू कर दिया है।
बाढ़ के बाद नेपाल को सहायता प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के रूप में भारतीय फोरेंसिक दल को वहां तैनात किया गया है। नेपाल बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि अब तक 1068 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 400 के केवल आंशिक अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के लिए कई लावारिश शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल पुलिस के अनुसार 583 विदेशी नागरिकों सहित 4600 लोग अभी भी लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। रसुआ और नुवाकोट जिलों में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी गलियारों के किनारे स्थित विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं में लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक सामग्री है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। वे मुंबई में हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, संपर्क तथा लोगों के बीच संबंधों सहित आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ेगा। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। कल उत्तरी कैरोलिना के एशविले में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा भारत अमेरिका आर्थिक वार्ता के केंद्र रही। इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारामन ने श्री बेसेंट को इस वर्ष के अंत में भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी संबंधी बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस इस महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष डबल्स में खेलते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला मैच 13 सितंबर को होगा, वहीं ये नई दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।